एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकन साहित्य की एक ऐसी किताब की जो समंदर जितनी ही विशाल और गहरी है, हरमन मेलविल की मोबी डिक और द वेल।
हाँ बिल्कुल, और ये एक ऐसा उपन्यास है मतलब जिसकी कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही आप कह सकते हैं फिलोसॉफिकल भी है, जटिल है।
और इसके लेखक हरमन मेलविल, उन्हें अपने समय में वो पहचान नहीं मिली, क्यों?
सही कहा, 1819 से 1891 तक का उनका जीवन रहा। अमेरिकी रेनेसां के बड़े लेखक माने जाते हैं आज, पर तब नहीं। उनकी जो शुरू की समुद्री यात्राएं थीं, खासकर एक वेल पकड़ने वाले जहाज एक्यूसिनेट पर उनका वक्त,
अच्छा,
और पोलिनेशियाई आइलैंड्स पर जो उन्होंने देखा जिया, वही सब उनकी किताबों का बेस बना।
उनके पहले के नॉवेल जैसे टाइपी और ओमो, वो तो सफल भी हुए थे शायद।
हाँ वो काफी चले थे, लेकिन 1851 में जब मोबी डिक आई तो ये जैसे उनका सबसे बड़ा सपना था, उनकी महत्वाकांक्षा का शिखर। इसमें सब कुछ है, समंदर का रोमांस, फिलॉसफी, ट्रेजेडी और वेल पकड़ने की पूरी दुनिया का जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया।
और उन्होंने इसे अपने दोस्त नथानियल हॉथॉर्न, जो खुद एक महान लेखक थे, उन्हें डेडिकेट भी किया था।
बिल्कुल, पर देखिए ना किस्मत की बात, अपने टाइम में ये किताब फ्लॉप हो गई बुरी तरह।
क्यों, लोगों को क्या समझ नहीं आया?
शायद इसकी कहानी कहने का तरीका जो कई लेवल पर चलता है, फिर फिलॉसफी वाले हिस्से और अंत जो थोड़ा निराशाजनक सा था उस जमाने के हिसाब से, ये सब शायद पाठकों के लिए ज्यादा हो गया।
इसे ग्रेट अमेरिकन नॉवल का दर्जा तो बहुत बाद में मिला, 20वीं सदी में, जिसे मेलविल रिवाइवल भी कहते हैं।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस महाकाव्य की जो जटिल परतें हैं उन्हें थोड़ा खोलें, कहानी देखें, किरदारों के मन की यात्रा को समझें, इसके गहरे विषय और वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने इसे इतना महान बनाया। तो कहानी शुरू होती है शायद लिटरेचर की सबसे फेमस लाइनों में से एक से, कॉल मी इश्माइल।
मुझे इश्माइल कहो।
इश्माइल हमारा नरेटर,
हाँ,
ये पहले स्कूल मास्टर था और जैसा वो खुद बताता है उसके मन में एक उदासी छाई हुई है, एक नम बूंदा बांधी वाली नवंबर जैसी, मतलब जीवन की बोरियत और डिप्रेशन से परेशान है।
अच्छा,
तो इससे बचने के लिए वो फैसला करता है कि चलो समंदर चलते हैं, एक वेल पकड़ने वाले जहाज पर नौकरी करेंगे,
एक तरह का पलायन।
बिल्कुल, और ये तलाश उसे ले जाती है न्यू बेडफोर्ड शहर, वहां एक सराय है स्पाउटर इन,
और वही उसकी मुलाकात होती है क्वीकवेग से।
एग्जैक्टली, क्वीकवेग एक पॉलिनेजियाई हार्पूनर, मतलब भाला फेंकने वाला। उसके पूरे शरीर पर टैटू हैं, अजीब से रीति रिवाज है, इश्माइल की दुनिया से बिल्कुल अलग।
तो इश्माइल पहले डरता होगा उससे?
हाँ थोड़ा झिझकता है, शायद डरता भी है, पर बहुत जल्द वो डर वो एक गहरे सम्मान और दोस्ती में बदल जाता है।
ये दिखाता है कि बाहरी दिखावा जरूरी नहीं है।
सही कहा, कल्चर अलग हो, रंग रूप अलग हो, पर अंदर की इंसानियत जोड़ देती है। वो दोनों फिर पक्के दोस्त बन जाते हैं और तय करते हैं कि साथ ही समुंदर की यात्रा पर निकलेंगे। ये दोस्ती बहुत अहम है इस नॉवेल में।
और फिर वो पहुंचते हैं नैंटकेट।
हाँ नैंटकेट, उस जमाने में समझिए वेलिंग इंडस्ट्री का मक्का था वो, दुनिया का सेंटर। वहाँ वो पीक्वॉड नाम के जहाज पर साइन अप करते हैं।
पीक्वॉड, ये नाम भी थोड़ा अजीब है ना?
हाँ अशुभ सा लगता है, ये एक अमेरिकी नेटिव ट्राइब का नाम था जो खत्म हो चुकी थी, और जहाज भी वो कोई नया नवेला जहाज नहीं, पुराना है, हड्डियों और बेल के दांतों से सजा हुआ, थोड़ा मनहूसियत का माहौल है उस पर।
और इसका क्रू?
क्रू तो जैसे पूरी दुनिया ही सिमट आई हो, अलग अलग देशों के, अलग अलग नस्लों के लोग, पूरी मानवता का एक छोटा सा मॉडल।
वही उन्हें कोई चेतावनी भी देता है, एलाइजा नाम का कोई करेक्टर।
हाँ नैंटकेट में ही एक अजीब सा आदमी मिलता है एलाइजा, वो उन्हें पिकवॉर्ड और उसके कप्तान अहाब के बारे में कुछ रहस्यमयी चेतावनियां देता है, जैसे आने वाले खतरे का इशारा कर रहा हो।
और फिर जहाज क्रिसमस के दिन निकलता है, ये भी एक अजीब बात है।
बिल्कुल, एक और अशुभ संकेत शायद। और कप्तान आहाब, वो तो शुरू में अपने कैबिन से निकलते ही नहीं, उनका रहस्य और गहरा होता जाता है।
और फिर वो पहली बार डेक पर आते हैं, कैसा था वो सीन?
अरे वो तो एकदम ड्रामेटिक एंट्री है, एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, वेल की सफेद हड्डी का बना नकली पैर, चेहरे पर एक लंबा सा निशान जैसे कोई पुरानी गहरी चोट हो।
उनकी आंखों में कुछ खास था।
हाँ एक अजीब सी चमक, एक जुनून, देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम कप्तान नहीं और ये सफर भी आम नहीं होने वाला।
बिल्कुल, और ये बात तब और साफ हो जाती है जब अहाब पूरे क्रू को क्वार्टरडेक पर बुलाते हैं।
ये सीन ये नॉवल के सबसे जरूरी सीन्स में से एक है।
वहीं वो अपना असली मकसद बताते हैं।
हाँ, वहीं वो राज खोलते हैं कि उनका असली लक्ष्य सिर्फ वेल का तेल जमा करना नहीं है, वो एक खास, एक दैत्य जैसी सफेद वेल मोबी डिक का शिकार करना चाहते हैं।
मोबी डिक?
वही, और वो जहाज के मेन मास्ट पर एक स्पैनिश सोने का सिक्का ठोक देते हैं। डाबलून इनाम है ये उस आदमी के लिए जो सबसे पहले उस सफेद वेल को देखेगा।
और फिर वो बताते हैं कि उसी वेल ने उनका पैर काटा था।
हाँ, वो अपने नकली पैर की तरफ इशारा करके गरजते हैं, बताते हैं कि इसी मोबी डिक ने उन्हें ऐसा बनाया। तो ये बिजनेस ट्रिप नहीं, ये पर्सनल वेंजेंस है, बदला, जुनून।
लेकिन पूरा क्रू कैसे मान गया इस पागलपन के लिए, सिर्फ सोने के सिक्के के लिए? या अहाब में ऐसा क्या था?
ये मिक्सचर था शायद। सोने का लालच तो था ही, समंदर का रोमांच भी, पर सबसे ज्यादा था अहाब का वो करिश्मा, एक अजीब सा, डरावना सा करिश्मा। वो अपनी बातों से जैसे क्रू के खून में उबाल ला देते हैं। एक अजीब सी रस्म होती है, हारपून को शराब में डुबोकर सब कसम खाते हैं कि वो अहाब के इस पागलपन भरे मिशन में उसका साथ देंगे।
लेकिन कोई तो होगा जिसने विरोध किया।
हाँ, सिर्फ एक आदमी, पहला मेट स्टारबक, वो आवाज उठाता है।
स्टारबक, वो क्या कहता है?
वो इसे पागलपन कहता है, ईशनिंदा कहता है, मतलब भगवान के खिलाफ जाना, एक बेजुबान जानवर से बदला लेना। वो तर्क देता है, पर उसकी समझदारी की बातें वो अहाब के गुस्से और बाकी क्रू के जोश के आगे दब जाती हैं।
तो पिक्वर्ड का भाग्य वहीं तय हो गया एक तरह से।
बिल्कुल, उसी पल। अब इस कहानी को और समझने के लिए किरदारों को थोड़ा और जानना होगा। सबसे पहले तो कप्तान अहाब खुद।
हाँ, अहाब, वो इस कहानी के हीरो हैं या विलेन?
यही तो सवाल है। वो एक ट्रेजिक हीरो हैं, जैसे शेक्सपियर के नाटकों में होते हैं। काबिल हैं, अनुभवी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो एक ही जुनून के गुलाम बन चुके हैं, मोबी डिक से बदला।
उनके लिए वो पैर कटना सिर्फ जिस्मानी चोट नहीं थी?
नहीं, वो एक रूहानी जख्म था, गहरा अपमान। वो मोबी डिक में सिर्फ एक जानवर नहीं देखते, उन्हें लगता है कि दुनिया की सारी बुराई, सारा द्वेष, सारी अनजान ताकतें, वो सब उस वेल के रूप में इकट्ठा हो गई हैं।
और वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, अपना जहाज, अपना क्रू, अपनी इंसानियत, सब कुछ।
हाँ, वो खुद भी एक जगह कहते हैं, ऑल माई मीन्स आर सेन, माई मोटिव एंड माई ऑब्जेक्ट मैड, मतलब मेरे तरीके तो ठीक हैं, पर मेरा मकसद और मेरा लक्ष्य पागलपन है। अहाब ये दिखाते हैं कि महानता भी जब जुनून के काबू में आ जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है।
फिर इश्माइल है हमारे कथावाचक, वो कैसे बदलते हैं इस यात्रा में?
इश्माइल शुरू में थोड़े अलग थलग से हैं, दुनिया से कटे हुए, समंदर उनके लिए बस एक एस्केपिज्म है, पर क्विकवेक की दोस्ती उन्हें बदल देती है, उन्हें इंसानी रिश्तों की कदर करना सिखाती है।
वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो सोचते भी बहुत है ना?
हाँ बिल्कुल, वो वेलिंग के बारे में बताते हैं, वेल के बारे में बताते हैं, समंदर के बारे में सोचते हैं, और जिंदगी के बड़े सवालों पर भी, जैसे किस्मत, मर्जी, बुराई क्या है, इन सब पर।
वो अहाब के पागलपन को देखते हैं पर उसमें बहते नहीं है।
सही कहा, वो एक दूरी बनाए रखते हैं। उनका सफर ज्ञान पाने का है, अनुभव लेने का है, और आखिर में जिंदा बचने का। वो अकेले ही बचते हैं ये कहानी सुनाने के लिए।
और मोबी डिक, वो सफेद वेल, वो क्या है असल में?
मोबी डिक वो एक जानवर से कहीं ज्यादा है, वो एक सिंबल है। स्टारबक के लिए वो बस एक बेजुबान जानवर है,
लेकिन अहाब के लिए?
अहाब के लिए वो शैतान है, नफरत का जीता जागता रूप। इश्माइल के लिए वो एक रहस्य है, समझ से परे। उसकी सफेदी भी डरावनी है। सफेद रंग पवित्रता का भी होता है, पर यहां वो मौत, खालीपन, यूनिवर्स की उदासीनता का प्रतीक है। वो अल्टीमेट अननोन है।
और स्टारबक, जो विरोध करता है अहाब का?
स्टारबक्स, पहला मेट, वो जहाज पर लॉजिक की आवाज है, जमीर की आवाज है, वो क्वेकर है, शांति पसंद, ड्यूटी वाला आदमी। वो अहाब के प्लान को खतरनाक भी मानता है और पाप भी।
पर वो अहाब को रोक क्यों नहीं पाता?
उसका पूरा सफर एक कश्मकश है। एक तरफ कप्तान का हुक्म मानने की ड्यूटी है, दूसरी तरफ उसे इस तबाही से रोकने की नैतिक जिम्मेदारी। वो कई बार सोचता है अहाब का सामना करने के करीब आता है, पर कर नहीं पाता।
क्या वो डरता था या बस सिस्टम को मानता था?
कहना मुश्किल है। शायद उसमें वो हिम्मत नहीं थी, या शायद उसे लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता। किस्मत में यही लिखा है। स्टारबक्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ सही गलत जानना काफी नहीं है, उस पर टिके रहना भी जरूरी है, खासकर जब सामने ताकतवर विरोध हो।
और क्विकवेग, इश्माइल का दोस्त?
क्विकवेग, वो सभ्य दुनिया के दिखावे से परे है, एक नेक जंगली, बहादुर, वफादार और अंदर से बहुत आध्यात्मिक।
वो बीमार भी पड़ जाता है बीच में।
हाँ, बहुत बीमार। वो अपने लिए एक ताबूत भी बनवा लेता है, मरने की तैयारी, लेकिन फिर वो अपनी इच्छा शक्ति से मौत को टाल देता है। ये दिखाता है कि किस्मत पर उसकी एक पकड़ है जो अहाब में नहीं दिखती।
और वही ताबूत बाद में इश्माइल को बचाता है।
हाँ, यही तो आयरनी है। मौत के लिए बनी चीज जिंदगी बचाने के काम आती है। मेलविल का सिंबलिज्म कमाल का है।
तो पिकवॉट की यात्रा शुरू होती है अटलांटिक, फिर अफ्रीका के नीचे से होते हुए हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर।
हाँ, वेल के शिकार के जो जाने पहचाने रास्ते थे उन्हीं पर। ये सिर्फ मीलों का सफर नहीं था, ये अंदर का भी सफर था।
नॉवल में वेलिंग के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है ना?
ओ, बहुत ज्यादा। वेल का पीछा करना, हरपून मारना, मरे हुए वेल को जहाज तक लाना, फिर उसकी चर्बी यानी ब्लबर को काट कर तेल निकालना, सब कुछ बहुत विस्तार से।
मेलविल ने तो वेल के क्लासिफिकेशन पर, मतलब सीटोलॉजी पर पूरे चैप्टर लिखे।
ये कहानी को धीमा नहीं करते, करते हैं थोड़ा, पर ये जरूरी भी है। इनसे वेलिंग की दुनिया असली लगती है और वेल का जो रहस्यमयी माइथोलॉजिकल रूप है वो और गहरा होता है।
रास्ते में वो दूसरे जहाजों से भी मिलते हैं, गैम्स।
हाँ, गैम्स। हर मुलाकात कहानी में कुछ नया लाती है। कुछ जहाज मोबीडिक के बारे में और डरावनी कहानियां सुनाते हैं, उसकी शोहरत और बढ़ती जाती है, जैसे एल्बट्रॉस, जेरोबोम।
एक जहाज के कप्तान का भी हाथ मोबीडिक ने काटा था, पर वो बदला नहीं लेना चाहता था।
हाँ, सैमुअल एंडेबी का कप्तान, उसने भी अपना हाथ खोया था, पर वो इसे बस किस्मत मानकर भूल चुका है। उसमें अहाब जैसा जुनून नहीं है। ये कंट्रास्ट दिखाता है कि अहाब कितना अलग है, कितना ऑब्सेस्ड है।
और फिर रेचल जहाज से मुलाकात, वो बहुत मार्मिक है।
बहुत। रेचल का कप्तान अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहा है। उसकी नाव आखिरी बार मोबीडिक के पीछा करते हुए ही देखी गई थी। वो अहाब से मदद मांगता है, गिड़गिड़ाता है।
और अहाब?
अहाब मना कर देता है, साफ। वो अपनी धुन में इतना अंधा है कि उसे किसी की तकलीफ नहीं दिखती। ये दिखाता है कि उसका जुनून उसे कितना इनह्यूमन बना चुका है।
तो अब स्टेज सेट है, प्रशांत महासागर और आखिरी टकराव।
हाँ, फाइनल शोडाउन, पिकविड वर्सेस मोबीडिक। अहाब का जुनून अब अपने चरम पर है।
ये 3 दिन चलता है, द चेज।
3 दिन? समुद्री कहानियों के सबसे इंटेंस, सबसे भयानक सीन्स हैं ये। कहानी की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है, भाषा भी और ज्यादा पावरफुल, पोएटिक हो जाती है।
पहले दिन क्या होता है?
मोबीडिक सामने आता है, नावें पीछा करती हैं, पर वो पलट कर हमला करता है। एक नाव टूट जाती है, अहाब का नकली पैर भी टूट जाता है।
दूसरे दिन
लड़ाई और भयानक हो जाती है, मोबीडिक फिर हमला करता है और नावें तोड़ता है, और इसी अफरा तफरी में फेदाला, वो पारसी हापुनर जो अहाब के साथ था,
हाँ, जिसकी भविष्यवाणियां थी,
वो समंदर में कहीं खो जाता है।
और तीसरा दिन, आखिरी दिन?
तीसरे दिन फेदाला की एक भविष्यवाणी सच होती है। अहाब को मोबीडिक की पीठ पर फेदाला की लाश दिखती है, हापून की रस्सियों में लिपटी हुई।
भयानक मंजर।
हाँ, पर ये भी अहाब को नहीं रोकता। वो आखिरी बार पूरी नफरत के साथ अपना हारपून फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सफेद व्हेल पूरी ताकत से पिकवर्ड जहाज में टक्कर मारती है।
जहाज डूबने लगता है।
हाँ, टूटने लगता है, एक भमर बनने लगता है, पर अहाब की नजर सिर्फ मोबीडिक पर है। वो चिल्लाता है, टू द लास्ट आई ग्रैपल विद दी, फ्रॉम हेल्स हार्ट आई स्टैब एट दी। मतलब आखिरी दम तक तुझसे लड़ूंगा, नरक की गहराइयों से तुझ पर वार करूंगा।
और फिर
जैसे ही वो हारपून फेंकता है, रस्सी का फंदा घूमकर उसी के गले में फंस जाता है, और वो अपने दुश्मन मोबीडिक के जिस्म से बंधकर समंदर की गहराइयों में खिंच जाता है।
और जहाज
पिकवर्ड उस भंवर में समा जाता है। अहाब, स्टारबक, क्विकवेक, सबके सब, पूरा क्रू, खत्म, सन्नाटा।
इतनी तबाही, लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, पर कहानी खत्म नहीं होती।
नहीं, एक एपिलॉग है, एक अंतिका।
कौन बचता है?
सिर्फ एक, इश्माइल। वो जहाज टूटने से पहले ही किसी तरह दूर छिटक गया था।
और उसे बचाता है क्विक विक्स का ताबूत।
हाँ, वो ही ताबूत जो अब लाइफबोट बन गया है। एक पूरा दिन और रात वो उसी के सहारे समंदर में तैरता रहता है अकेला।
और फिर उसे कौन बचाता है?
रेचल जहाज, वही जहाज जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, जिसकी मदद करने से अहाब ने मना कर दिया था। किस्मत का खेल देखिए।
तो इश्माइल बच जाता है ये कहानी हमें सुनाने के लिए।
हाँ, तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो कौन से बड़े थीम, कौन से मुख्य विचार सामने आते हैं? सबसे पहले तो वही जुनून और बदले का अंधापन।
हाँ, अहाब का जुनून जो उसे और सबको ले डूबता है। ये सवाल उठता है कि हद से ज्यादा दृढ़ निश्चय और पागलपन में कितना फर्क है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है इंसान और प्रकृति का रिश्ता। वेलिंग क्या है? प्रकृति पर काबू पाने की इंसानी कोशिश ही तो है, एक हिंसक कोशिश।
और मोबीडिक?
मोबीडिक उस प्रकृति का प्रतीक है जो अदम्य है, रहस्यमयी है, जिसे इंसान कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। शायद ये लड़ाई ही बेकार है।
किस्मत और मर्जी का सवाल भी है। क्या सब कुछ पहले से तय था? वो चेतावनियां, वो अशुभ संकेत?
हाँ, या फिर किरदारों के पास, जैसे स्टाबक के पास चुनाव करने का मौका था। क्या हम अपनी किस्मत के धागों से बंधे हैं या हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं? मेलविल ये सवाल छोड़ देते हैं हमारे लिए।
ज्ञान की सीमाएं, ये भी एक थीम है। इश्माइल कितनी कोशिश करता है वेल को समझने की, समंदर को समझने की।
हाँ, साइंटिफिक तरीके से, इतिहास से, फिलॉसफी से, पर वो रहस्य बना रहता है। मॉबी डिक की सफेदी शायद इसी बात का प्रतीक है कि सच हमेशा पकड़ में नहीं आता।
और दोस्ती बनाम अकेलापन, इश्माइल और क्विकविंग की दोस्ती दिखाती है कि इंसानी रिश्ते कितने जरूरी हैं, कैसे वो हमें बचाते हैं।
कल्चरल क्रू है वो, एक तरह से डेमोक्रेसी जैसा है, पर ये भी दिखता है कि कैसे एक करिश्माई लीडर उसे अपने खतरनाक इरादों के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
मेलविल का लिखने का स्टाइल भी बहुत अलग है। कभी इश्माइल बोलता है, कभी कोई और ही नरेटर आ जाता है, कभी ड्रामा के डायलॉग जैसे।
हाँ, भाषा भी देखिए, कहीं बाइबल जैसी भव्यता, कहीं शेक्सपियर जैसी गहराई, और कहीं समुंदर की जमीनी हकीकत। सिंबल्स तो भरे पड़े हैं।
सफेद वेल, जहाज, समुंदर, वो सोने का सिक्का, ताबूत, हर चीज का मतलब है।
बिल्कुल। और अशुभ संकेत, फोरशैडोइंग, वो पाठक को आने वाली ट्रेजेडी के लिए तैयार करते रहते हैं।
इस किताब को पढ़कर एहसास कैसा होता है? रोमांच, डर और अंत में उदासी।
हाँ, सब कुछ। विस्मय है, एडवेंचर है, डर है और एक गहरी उदासी, ट्रेजेडी का एहसास। इश्माइल बच जाता है, ये एक उम्मीद देता है, पर वो अकेला है, साक्षी होने का बोझ है उस पर। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हीरो कौन है, विलेन कौन है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लाइनें धुंधली हो जाती हैं।
प्रकृति कितनी विशाल है, कितनी रहस्यमयी, और इंसान उसके सामने कितना छोटा।
सही कहा। और मानवीय रिश्ते कितने नाजुक हैं। इश्माइल की वो बात याद आती है, इट इज नॉट डाउन ऑन एनी मैप, ट्रू प्लेसेस नेवर आर। सच्ची जगह नक्शों में नहीं होती, शायद जीवन के गहरे सच भी किसी परिभाषा में बंद नहीं सकते।
तो मोबी डिक सिर्फ एक समुद्री कहानी नहीं है, ये इंसान के मन की गहराइयों की, उसके अस्तित्व के सवालों की एक काव्यात्मक पड़ताल है।
हाँ, ये हमें जुनून के खतरों और ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने इंसान की सीमाओं की याद दिलाती है। और ये सबक आज भी उतना ही जरूरी है ना?
द्वारा प्रस्तुत है।